श्रुति विप्रतिपन्नाते
श्रुति विप्रतिपन्नाते
यदा सास्यति निश्चला
यदा सायसि निश्चला समादावचला बुद्धि सदा योगमवाप्यसि।
जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की पढ़िए तात्पर्य।
कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्मा साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना मृत में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त हो न अल्प कर्मयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयता ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है, उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। हरे हरे
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो इसके पहले हमने 53वें श्लोक में देखा, क्या देखा, भगवान ने क्या बताया था। 53 दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान ने बताया था, क्या कहे थे भगवान। भगवान कहते कि बुद्धि मोह के अंधकार से मुक्त हो जाएगी, लेकिन कब? मोह के अंधकार से जब वो मुक्त हो जाएगी तब हमको कर्म कांड से विरक्ति हो जाएगी। अब मोह के अंधकार से कब मुक्त हो जाएगी? कृष्ण भावना भावित होने से मोह रूपी अंधकार से बुद्धि मुक्त हो जाएगी। और जब मोह रूपी अंधकार से बुद्धि मुक्त हो जाएगी तभी विरक्ति आएगी, ऐसे विरक्ति नहीं आएगी। ऐसे कितना भी बोलिए कांदा लहसुन मत खाओ, चाय कॉफी मत पियो, क्या फर्क पड़ता है एक दिन पिया तो। ये तो सब लोग कहते दवाई है ऐसे मोह में, ये मोह है, तो ये मोह से बुद्धि छूटेगी नहीं। मोह के अंधकार, मोह रूपी अंधकार से बुद्धि तब छूटेगी जब हम कृष्ण भावना भावित होंगे, और जब ये इस प्रकार से मोह के अंधकार से छूटेगी तभी हमारे अंदर थोड़ी बहुत विरक्ति आएगी। विरक्ति अर्थात संन्यास नहीं, हम सोचेंगे विरक्ति अर्थात क्या चर्चा यहाँ ये हो रही है संन्यास लेने की, भगवत गीता में संन्यास की चर्चा हो रही है क्या? बहुत से लोग कहते हैं कि क्या भगवत गीता सुने, वो तो साधु संन्यासियों को साधु संतों के लिए है। तो भगवत गीता में कहीं पे बताया है भगवान ने संन्यास ले लो, कर्म मत करो, बस जाके जंगल में संन्यास ले लो, ऐसा भगवान ने कहीं पे भी नहीं कहा है। इसके पिछले श्लोक में ही भगवान ने यही कहा कि कृष्ण कॉन्शियस होने की जरूरत है, कृष्ण भावना भावित होने की आवश्यकता है, यह बात ध्यान में रहनी चाहिए। आवश्यकता किसकी है? कृष्ण भावना भावित होने की आवश्यकता है, ताकि सब भूल जाना चाहिए। जब कृष्ण भावना भावित हम हो जाते हैं तो अपने आप जो हमारे सर के ऊपर हम वजन लेके चल रहे हैं वो अपने आप गलते जाता है, धीरे धीरे जो वजन है वो कम होते जाता है। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जब अर्जुन की बुद्धि कृष्ण भावनामृत की समाधि में अचल हो जाएगी, कहते हैं ना जब तुम्हारे मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। आत्म साक्षात्कार की समाधि में, अर्थात जब बुद्धि कृष्ण भावनामृत की समाधि में अचल हो जाएगी, तब उन्हें श्री कृष्ण का योग अर्थात श्री कृष्ण का मिलन प्राप्त होगा। बड़ा कठिन लग रहा है नहीं समझने को? अचल हो जाएगी। तो यहां पहला ही जो पहली पंक्ति है उसमें कहा है श्रुति विप्रतिपन्ना ते अर्थात बुद्धि, श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि, उसका अर्थ ऐसे होता है तो श्रुति के विपरीत उत्तर देने वाली बुद्धि, इसका अर्थ क्या होता है? श्रुति के विपरीत उत्तर देने वाली बुद्धि। तो श्रुति क्या है? आपने कभी सुना है ये नाम श्रुति? कहां सुना है? नहीं, कहां सुना है? भगवत गीता परिचय, रिव्यू, इंट्रोडक्शन, इन सभी कोर्सेस में, हमारे यहाँ चार पांच क्लासेस में श्रुति कई बार चर्चा है, श्रुति शास्त्र क्या है। तो श्रुति शास्त्र जो श्रवण किया जाता है, परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? श्रुति भी प्रतिपन्ना बुद्धि, अर्थात ऐसी बुद्धि जो श्रुति के विपरीत उत्तर देने वाली है। श्रुति के विपरीत उल्टा शास्त्र के उल्टा ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो यहाँ जो श्रुति शब्द के जो अर्थ है, दो प्रकार के अर्थ है। एक तो पहला अर्थ है वैदिक कर्मकांड और दूसरा अर्थ है सुनने की क्रिया। सुनने की क्रिया एक अर्थ है, दूसरा अर्थ है वैदिक कर्मकांड। तो यहाँ भगवान जो इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं उनका अर्थ यह है ऐसी बुद्धि जो वैदिक कर्म कांड को सुनने की क्रिया को विपरीत उत्तर देती है। अर्थात वैदिक कर्म कांड जो है, ये जो हम सुनते हैं, वैदिक कर्म कांड हम सुनते हैं ना, श्रवण करते हैं, वो सुनने के पश्चात उसको हानि बोलती है, उसको क्या बोलती है? ना, उसको कहा गया है वीप, मतलब विप्रतिपन्ना। ऐसी बुद्धि जो श्रुति शास्त्र, ऐसा शास्त्र जो कर्म कांड के आधार पे सब कुछ हमको बताता है, वो सब सुनने के लिए ये बुद्धि क्या बोलते हैं? नो, ये नहीं सुनना है। अर्थात वैदिक कर्म कांड में, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो वैदिक कर्म कांड में होता क्या है, क्या बताया जाता है? जैसे इसमें बताया गया अलंकारिक भाषा, तात्पर्य में बताया है। तो वैदिक कर्म कांड में उदाहरण देखा जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति को बहुत महत्व दिया गया है कि नहीं? कर्मकांडीय सेक्शन जो है, कर्मकांडीय भाग जो है, उसमें क्या बताया गया है? स्वर्ग की प्राप्ति दी बेस्ट, स्वर्ग की प्राप्ति करो। स्वर्ग की प्राप्ति को बहुत अच्छा माना गया, क्यों? क्योंकि ये स्वर्ग की प्राप्ति होने पे यहां का जो जीवन है, स्वर्ग का जो जीवन है ना प्रभु जी, बड़ा अच्छा है। उसमें क्या होता है, अरे इतनी फैसिलिटी मिलती है वहां पे स्वर्ग के जीवन में इतनी फैसिलिटीज है, इतनी सुख सुविधाएं है, बहुत सुख सुविधाएं है स्वर्ग में। इसलिए कर्म कांड इसलिए किया जाता है कि वो सुख सुविधाओं को भोग सके। उन सुख सुविधाओं को भोगने के लिए कर्म कांडीय भाषा या कर्म कांड का कर्म कांड को उपयोग में लाया जाता है, कर्म कांड उपयुक्त है उसके लिए। फिर वहां क्या होता है, बहुत अच्छे गंधर्व अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, बड़े सुंदर सॉन्ग चलते रहते हैं, गायन नहीं, किसको नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना ऐसा कोई है जिसने बचपन से गाने नहीं सुने होंगे? हर व्यक्ति को संगीत अच्छा लगता है। तो स्वर्ग में तो गंधर्व स्पेशल कैटेगरी, गंधर्व लोग जो होते हैं वो केवल गायन करते हैं, क्या बात है। तो उन गंधर्वों का गायन सुनना है, बहुत सारे सुख सुविधाओं का उपभोग करना है, गंधर्वों का गायन सुनना है, और वहां की अप्सराएं सुंदर नृत्य करती है, तो कान इंद्रिय तृप्ति, कान को अच्छा लगना चाहिए, आंख को अच्छा दृश्य दिखना चाहिए, तो वहां पे अप्सराएं नृत्य करती है, फिर बहुत सुंदर सुंदर फूलों का सुगंध आता है 24 आवर्स, बहुत सुंदर वहां पे गार्डन से फूलों के बगीचे, पुष्प वाटिका है नंदन कानन, उसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रकार के फूल है, और वो फूलों का बड़ा सुंदर सुगंध 24 घंटे आते रहता है। जो गले में माला पहनाई जाती है फूलों की, वो कभी मुरझाती ही नहीं स्वर्ग में, ऐसा स्वर्ग की विशेष बातें है। वहां कोई कीचड़ मलमूत्र ऐसा कोई वस्तु होता ही नहीं, ऐसे नाम का कोई कीचड़ डस्ट ये ऐसा कुछ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कुछ नहीं, कभी रोड खोद के नहीं रखते है रोड बहुत अच्छे रहते हैं, जबकि रोड की उनको आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक को, प्रत्येक जीव जो वहां पहुंचता है, तो प्रत्येक जीव को एक एरोप्लेन दिया जाता है, एक विमान दिया जाता है, प्रत्येक जीव को एक विमान, और ऐसा विमान जिसमें पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है, इच्छा करो कि उड़ने लगता है, इच्छा करो रुकने का तो रुक जाता है। एक एक व्यक्ति को एक एक विमान फ्री, यहाँ तो एक गाड़ी लेना है, कार लेना है तो लोन निकालना पड़ता है, वहां एक एक विमान फ्री मिल जाता है। सोचिए कितनी 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 फैसिलिटीज है। खान पान रहन सहन विशेषकर खाना पीना, इसके लिए कोई कष्ट नहीं करने पड़ते हैं। देखिए खाना पीना हो गया, सब ऐश आराम हो गया, विमान मिल गया, अब ये सब सुनने को हमको अच्छा लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है? किसको नहीं अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मान लो हमको मिल गया तो कोई नहीं बोलेगा? हम सब जो यहां बैठे हैं सब हम बोलेंगे हरी बोल हरी बोल है कि नहीं? तो यहां कहने का अर्थ ये प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में बता रहे हैं कि वो ऐसी बुद्धि है, ऐसी वो बुद्धि है, वो बुद्धि इन सब बातों को नहीं बोलती है, ये नहीं चाहिए। क्या कहती है? इन सारे फैसिलिटीज को क्या कहती है? श्रुति विप्रतिपन्ना ते, वो बुद्धि ते अर्थात वो बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना, इस प्रकार से जो कर्म कांडीय भाषा है, अलंकारिक भाषा है, जिससे सुख की, भौतिक सुख की, इंद्रिय सुख की केवल प्राप्ति होती है, उसी के विषय में बताया जाता है, वर्णन किया जाता है, क्या सुंदर फैसिलिटी है, उसको वो बुद्धि बोलती है, नो ये हमको नहीं चाहिए, इसकी हमको आवश्यकता क्यों, आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए ऐसे जिन लोगों की बुद्धि मोह के अंधकार में है, वे लोग तो ऐसे हाँ ही बोलेंगे वे लोग नहीं नहीं बोलेंगे, वे क्या कहेंगे कि ये तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बढ़िया बात कही प्रभु जी। और कुछ बताइए फैसिलिटीज, आपने इतनी फैसिलिटीज बताई, और कुछ बताइए आगे का प्रवचन बाद में नेक्स्ट फ्राइडे कीजिए। स्वर्ग में क्या क्या फैसिलिटी है थोड़ा और बताइए ना। बाकी आध्यात्मिक नेक्स्ट टाइम। ये इस प्रकार की जो बुद्धि सोचती है वह बुद्धि कौन सी बुद्धि है? वो मोह में फंसी हुई बुद्धि, मोह के अंधकार में फंसी हुई बुद्धि है। उस बुद्धि को ऑल द टाइम नित्य क्या चाहिए? फैसिलिटीज। कहाँ फैसिलिटीज है, कहाँ अच्छा भोग है, कहाँ इंद्रिय सुख है, कहाँ तृप्ति है, वो उस बुद्धि को चाहिए। परंतु यहां जिस बुद्धि की, भगवान यहां किसके बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण किसके बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं? क्या बोले, किसके बुद्धि? भगवान यहां पे इनडायरेक्टली अर्जुन के बुद्धि की बात कर रहे हैं। और अब जब हम ये सोचते हैं अर्जुन के बुद्धि की यदि वो बात कर रहे हैं, तो अर्जुन की बुद्धि मोह में तो फंसी थी, परंतु अर्जुन के साथ भगवान है। मोह में तो है अर्जुन, परंतु उनके साथ कौन है? भगवान है। और दूसरी बात है कि अर्जुन उस प्रकार से स्वर्ग का सुख भोगने के लिए ऐसी बुद्धि नहीं रखे, मोहित नहीं हुए हैं। ये प्रश्न ये है कि अर्जुन स्वर्ग का सुख भोगने के लिए या कर्म कांडों का स्वीकार करने के लिए इस प्रकार से मोहित हुए हैं क्या? नहीं हुए। अर्जुन को स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। तो फिर भगवान इस प्रकार के बुद्धि की बात इसलिए कर रहे हैं कि भगवान जानते हैं कलयुग में आने वाले सारे जीवों की बुद्धि ऐसे ही रहेगी मोहग्रस्त। नित्य क्या सोचेंगे? हमको स्वर्ग में जाना है। सब सोचेंगे स्वर्ग में जाना है। तो इस प्रकार से हम ये सोचते हैं स्वर्ग में जाना, परंतु स्वर्ग में जाना इसलिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जब तक हमारा अकाउंट चल रहा है, अकाउंट में बैलेंस है, तब तक तो खूब ऐश करेंगे, खूब इंद्रिय तृप्ति करेंगे, खूब भौतिक सुख का आस्वादन करेंगे। और जब अकाउंट खाली हो गया तो देखिए, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और गरीब व्यक्ति धीरे 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 कष्ट करते हुए, कर्म करते करते, भगवान का स्मरण करते करते अच्छे स्थिति में आ गया है ना, तो बहुत अच्छी बात है। या कोई गरीब व्यक्ति मान लो अच्छे स्थिति में नहीं आया और गरीब हो गया, कोई गरीब व्यक्ति और गरीब हो गया, तो उसको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उसको तो आदत है। मान लो कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति एकदम भिखारी बन गया, फुटपाथ पे आ गया, उसको कितना कष्ट होगा। कोई गरीब व्यक्ति एकदम गरीब हो गया तो उसको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, परंतु कोई बहुत धनी व्यक्ति एकदम दरिद्री बन गया किसी कारण से, एकदम रास्ते पे आ गया, उसको कितना कष्ट होगा, कितनी प्रताड़ना होगी, कितना दुख होगा, नहीं होगा? तो ऐसे ही ये स्वर्ग की बात है। बड़े धूमधाम से स्वर्ग में चले जाते हैं और वो सारे फैसिलिटी को एंजॉय करते हैं, उधर जाके सारे सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, सारा जब तक पुण्य है तब तक भोग करते, बड़े ऐश्वर्य में रहते हैं, और जब अकाउंट खाली हो जाता है पुण्य कर्म का, अकाउंट बैलेंस नील हो जाता है, और जब वो वापिस आ जाते हैं तो उनको जैसे एक बड़ा धनी व्यक्ति एकदम गरीब हो जाता है, उसी प्रकार का दुख उनको होता है। कहां स्वर्ग का सुख और कहां बॉम्बे की ट्रैफिक। कहां स्वर्ग में विमान मिला था बिना फ्यूल का, मंत्र बोलो तो कहां के कहां पहुंचा देता था, और कहां यहां का पोल्यूशन। तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुखमय जीवन हो जाता है। इसलिए जो शुद्ध बुद्धि है, अचला बुद्धि है, वो इस प्रकार के सुख की इच्छा नहीं करती। तो दूसरा पॉइंट जो बताया गया है श्रुति निश्चला बुद्धि, क्या कहा है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। पहली जो बुद्धि बताई गई वो कौन सी है, श्रुति विप्रतिपन्ना मतलब अर्थ अर्थात ऐसी बुद्धि जो क्या करती है, वैदिक कर्मकांड को सुनने की क्रिया में विपरीत उत्तर देती है, वैदिक कर्मकांड को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखती है, ऐसा सिंपल समझिए। पहले प्रकार की बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्नाते, वैदिक कर्मकांड कोई हमको कहेगी अरे प्रभु जी वहां पे बड़ा बहुत बड़ा कर्मकांड का प्रोग्राम चल रहा है बहुत बड़ा, चलिए आइए आइए, है ना, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र है वहां पे भगवान का कुछ है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ओम फट स्वाहा जलम देरी जलम देरी बार बार जलम देरी ऐसा सब हो रहा है। तो जो बुद्धि एक बार इस प्रकार के कर्म कांड को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखती उस बुद्धि की इस पहले पंक्ति के पहले शब्द का भगवान ने वर्णन किया है उस भक्ति बुद्धि के विषय में। अब दूसरी भक्ति बुद्धि का विषय है श्रुति निश्चला बुद्धि। अब ये कौन सी बुद्धि है, ये वो बुद्धि है जो कर्म कांड से प्रभावित नहीं होती, अरे बोल इससे प्रभावित नहीं होती। पहली जो बुद्धि है वो क्या है, पहला जो बुद्धि का प्रकार है वो क्या है,
कर्म कांड सुनने में रस
नहीं रखती, कर्म कांड को सुनने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं। दूसरी बुद्धि क्या, मान लो कभी सुन लिया है ना, ऐसा मौका आ सकता है जीवन में कि ये सुनना पड़ता है, कभी सुन लिया इस बुद्धि के लोगों ने, सुनने पर वो बुद्धि प्रभावित नहीं हो। एक बुद्धि है सुनने में रस ही नहीं रखती, मान लो यदा कदाचित सुनना पड़ा तो सुनने से प्रभावित नहीं। कई बार भक्तगण कई जगह पे जाते हैं और कई बहुत बड़े भव्य दिव्य मंदिर में एकादे चले जाते हैं, अरे प्रभु जी वो अहमदाबाद में इतना बड़ा भव्य मंदिर है, ऐसे 100 इस्कॉन के मंदिर तो एक और तो वो मंदिर, ऐसे हमको बताते हैं पर ये जो दूसरे निश्चला बुद्धि, दूसरे प्रकार की जो बुद्धि है वो क्या सोचती है, इन सब बातों से प्रभावित नहीं होती, वो सोचती है कि वहां भगवान कृष्ण की सेवा कितनी होती है, भव्यता दिव्यता इससे हमको कुछ करना नहीं है, कितना बड़ा ऐश्वर्य इससे भी हमको कुछ करना नहीं है, हमका हमारा कंसर्न क्या है, हमारा कंसर्न यह है कि वहां पे भगवान श्री कृष्ण की कितनी सेवा होती है, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का कितना आयोजन होता है, कितने लोग वहां पे आके श्रवण और स्मरण चिंतन करते हैं, इससे हमारी बुद्धि प्रभावित होती है। इसके व्यतिरिक्त किसी भी बात से जो बुद्धि प्रभावित नहीं होती वह बुद्धि कौन सी है, निश्चला बुद्धि। तो ये दूसरी प्रकार की बुद्धि, एक्चुअली ऐसी जो बुद्धि होती है वो चलायमान नहीं होती है ना, ऐसी बुद्धि जो चलायमान न हो। कभी कभी क्या होता है, एखादे व्यक्ति को कहते हैं बड़ी भगवान की कृपा है, ऐसा कहते हैं पर हम समझते हैं बड़ी भगवान की परीक्षा है बड़े भगवान परीक्षा है, कोई व्यक्ति को काफी ऐश्वर्य और बड़े एक से एक मौका मिलता है भोग करने का, एक के बाद एक संधि प्राप्त होती है भोग और इंद्रिय तृप्ति करने की, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे इतना भोग मिलता है। जब भोग व्यक्ति को प्राप्त होता है तो बुद्धि चलायमान हो जाती है, परंतु यहां यह कहने का अर्थ यह है कि भले ही भोग एक के पीछे एक, अभी आपके हमारे पास मान लो गाड़ी नहीं थी तो कार आ गई, अभी एक कार नहीं पांच कार आ गई, नारा तो पर विरार में रहते थे अभी नरीमन पॉइंट में रह रहे हैं, अब नरीमन पॉइंट में अभी अमेरिका में भी दो चार फार्म हाउस ले लिए, अब वो भी नहीं, चांद पे भी एक घर बांधने का सोच रहे अभी है ना, आजकल चांद में जाके रह सकते हैं ऐसा कोई बोलते हैं, सो कॉल्ड भ्रम है। इतना सोच रहे, इतना ऐश्वर्य, इतना भोग प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक समय जब भोग प्राप्त होते जाता है, हम भोग का चिंतन करते रहते और भोग प्राप्त होता है, तब हमारी बुद्धि और चलायमान हो जाती है, निश्चल नहीं रहती, चलित हो जाती है। चल चित्तम चलत वित्तम चंचलम इदम सर्वम, इदम सर्वम चंचलम, सब कुछ चंचल है। चल चित्तम चल चलत वित्तम, वित्त मतलब अर्थ, अर्थशास्त्र, लक्ष्मी धन चलायमान है। उसी प्रकार से चित्त भी बुद्धि भी चलायमान हो जाती है, और जब एक के पीछे एक भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते तब तो सोने पे सुहागा तो उस समय तो बुद्धि और अचला हो जाती है और चंचल हो जाती है। तो यहां कहा गया वो ऐसी बुद्धि होती है, एक के पीछे कितने भी ऐश्वर्य भोग या इंद्रिय तृप्ति के साधन या संधि प्राप्त होने दीजिए, ये बुद्धि चलाए माने निश्चल रहती है, स्थिर रहती है कि नहीं। अर्जुन की इस प्रकार की बुद्धि है, कैसे पता चलेगा? स्वर्ग में अर्जुन गए थे, 5 वर्ष तक रहे स्वर्ग में। हाँ, कितने वर्ष तक रहे? 5 वर्ष तक वो स्वर्ग में रहे। सारे ऐश्वर्य स्वर्ग में क्या है, अभी हमने जैसे चर्चा की थी, स्वर्ग में सारे ऐश्वर्य, उन सारे ऐश्वर्य सारी फैसिलिटी अर्जुन को प्राप्त हुई, सुंदर भोग, इतने सारे ऐश्वर्य प्राप्त हुए, अस्त्र विद्या अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए वहां पे हो गए थे देवी देवताओं से, और उन्होंने प्राप्त की और 5 वर्ष तक ट्रेनिंग दिए वहां पे। कई बार कहा गया 1 वर्ष के बाद वो वापिस आए, पर कहा कई कहा है 5 वर्ष, जो भी जितने भी समय के लिए वहां गए, इतने ही नहीं, उतने ही समय नहीं रहे, उतना ही उनको भोग प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उर्वशी आ गई उनके पास। अब बताइए क्या कमी रह गई भोग में? उर्वशी उनको मैरिज प्रपोजल दे दिए। उर्वशी कहने लगी कि मैं आप बहुत शूरवीर हो, बड़े पराक्रमी हो, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो अर्जुन तुरंत उनको प्रणाम किए। सोचिए अर्जुन की दशा क्या है, कौन सी बुद्धि है अर्जुन की? अर्जुन उनको प्रणाम किए और कहे कि हे माते, आप तो मेरी माता के समान है, और मैं इस भाव से यहां आया नहीं हूं, मैं तो एक विद्यार्थी के रूप में, शिष्य के रूप में आया हूं, और आप, मैं आपके लायक नहीं हूं, मैं आपको अपनी माता के समान समझता हूं। देखिए इतना प्रलोभन, इतनी फैसिलिटीज, इतना भोग, इतनी इंद्रिय तृप्ति होने पर भी अर्जुन क्या किए? उनको प्रणाम किए, और सारे स्वर्ग के सारे चाहते तो अर्जुन वहीं रह जाते हैं, उनके पास इतनी शक्ति आ गई थी, वहां तो कम से कम 50-60 साल और रह सकते थे रिटायर होने तक। परंतु वो कह नहीं, मुझे मेरे कर्म करना है, मेरे भाई मेरे बंधु हैं, मुझे उनसे मिलना है, उन्हें उस भोग का उन सब का त्याग दे। उनकी बुद्धि उस समय चंचल नहीं हुई है कि नहीं? देखिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है ये ऐश्वर्य या प्रलोभन, इसमें सबसे बड़ा डेंजर खतरा धोखा क्या होता है? बुद्धि चलायमान होने का, बुद्धि चंचल होने का बड़ा भयंकर धोखा होता है, स्थिर नहीं रहती है बुद्धि। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर की भी इस प्रकार से परीक्षा ली, वहां तो साक्षात माया देवी आ गई, विचारिणी का रूप लेके माया देवी आ गई और उनको डिस्टर्ब करने लगी उनके जप साधना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परंतु हरिदास ठाकुर जी की बुद्धि जो है एकदम स्थिर है, चाहे कितने भी प्रलोभन आने दीजिए निश्चला है, जरा भी वो हिचकिचाए नहीं। उल्टा हुआ ये कि जब वो विचारिणी उनके पास आई तो हरिदास ठाकुर कहे कि देखिए मेरा जब बाकी है, थोड़ा बहुत जब बाकी है, मेरा जब होने दीजिए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, आपकी जो भी इच्छा है मैं पूर्ण करता हूँ, पर मुझे ये जब होने दीजिए, थोड़ा जब बाकी है। बोले ठीक है करो। पूरा दिन गया, पूरी रात बीत गई, दूसरा दिन निकला है आपका, फिर वो कहने लगी दूसरे दिन, हरिदास ठाकुर कह रहे फिर मेरा थोड़ा जब आज भी बाकी रह गया है और थोड़ा जब होने दो, जब पूर्ण होने दो फिर मैं आपकी बात सुनता हूं। ठीक है, फिर हरिदास ठाकुर जब करने लगे। वो जब की प्रभाव से उसके उस स्त्री के ऊपर इतना परिणाम हुआ कि उस जो जिस विचार से वो आई थी वो विचार तो छूट गया, लेकिन स्वयं वो इतनी प्रभावित हुई हरे कृष्ण महामंत्र से, हरिनाम उच्चारण से एक शुद्ध भक्त के द्वारा, कि वो स्वयं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक शुद्ध भक्त की बुद्धि इतनी स्थिर होती है, शुद्ध भक्त का लक्षण है, उनकी बुद्धि इतनी स्थिर होती है क्योंकि बड़ी शुद्धता से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। देखिए, एक शुद्ध भक्त जब हरे कृष्ण महामंत्र का शुद्धता से जप करता है तो बुद्धि तो उसकी स्थिर हो ही जाती है, परंतु उसमें इतनी योग्यता आ जाती है कि साक्षात माया देवी को दीक्षा दे देता है। यहां पे उस स्त्री को हरिदास ठाकुर उस माया देवी को साक्षात इनिशिएशन कर दिया, उसका इनिशिएट कर दिया, दीक्षा दे दी। दीक्षा कैसे थी, उन्होंने कोई दीक्षा पत्र नहीं दिया, परंतु उन्होंने हरिदास ठाकुर की परंपरा, हरिदास ठाकुर के उपदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। साक्षात माया देवी का काम तो एकदम विपरीत है, परंतु वो भगवान कृष्ण के नाम का जप करने लगी। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त के द्वारा हरिनाम का उच्चारण का श्रवण उसने किया उस माया देवी ने। और शुद्ध भक्त ने क्योंकि हरिनाम का उच्चारण किया इसलिए उनका बुद्धि स्थिर रहा। इसलिए इस कलयुग में हमको हर कदम पे, हर कदम कदम पे, पदम पदम आपदम, हर पद पे हर कदम पे हमको धोखा है, प्रलोभनों का। बाहर निकलते तो बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं चारों दिशाओं में, कहीं पे भी जाओ, कीचड़ में भी है, कहीं पे भी अच्छी जगह बुरी जगह बड़े बड़े बैनर से, घर में आओ तो टीवी है, हर जगह प्रलोभन है। अब हम सोचे कि ठीक है कोई ऐसी जगह जाके बैठ जाते जंगल में चार छह दिन के लिए ना, शांति, सारे प्रलोभनों से दूर चले गए जंगल में, जंगल में कोई रहने लगे, परंतु वहां पे मोबाइल है। प्रलोभन कहां छूटता है बताइए, सारी और चारों ओर से वो माया, वो प्रलोभन, वो भोग, वो विषय, वो तृप्ति की जो लालसाएं वासनाएं चारों ओर है। प्रसाद पीछे रखा है, ढका हुआ है, किसी का ध्यान है जरा देख लीजिए। तो इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इतने सारे हरिदास ठाकुर जी के सामने एक माया देवी का एक रूप आया था, हमारे सामने कितने रूप है माया के, सारे भक्तों के सामने। हाँ, जरा कैलकुलेट कीजिए तो 2-4 मिलियन लगेंगे, करोड़ों रूप लेके माया हमारे सामने सज धज के आ जाती है भक्त के सामने। इसलिए बुद्धि स्थिर होना बहुत जरूरी है। इस श्लोक में कहा है, श्रुति निश्चला बुद्धि, निश्चला मतलब चलायमान नहीं, स्थिर होनी चाहिए बुद्धि, नहीं तो ये बड़ा भयंकर घनदाट जंगल है और ये सारे हिंसक पशु है, बड़े बड़े कोबरा नाग निकले घर के बाहर, घर में भी जैसे खाने को दौड़ रहे। हमको इससे प्रोटेक्शन करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब बड़ी शुद्धता से रोज करना चाहिए, बड़ी शुद्धता। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने भी स्थिर बुद्धि का उदाहरण दिया है। फिर तीसरा, तीन प्रकार की बुद्धि भगवान ने इसमें जो चर्चा की, पहली बुद्धि क्या है, श्रुति, हाँ, जो कर्म कांड को सुनने में रस नहीं रखती है। दूसरी बुद्धि क्या है, जो कर्म कांड जैसे विषयों में विषयों से प्रभावित नहीं होती है। चाहे तो अर्जुन प्रभावित हो सकता था उर्वशी से, नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर प्रभावित हो सकते थे उससे, नहीं हुए। आप सब भक्त तो बड़े भाग्यशाली, आप भी प्रभावित हो सकते, परंतु आप भी नहीं होते। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और शुक्रवार बुधवार जितने भी संभव है सारे प्रवचनों में सत्संग का लाभ उठाते हैं। बड़े भाग्य की बात है ये सुपर कैप्सूल है प्रोटेक्शन की हमारे संरक्षण की सुपर कैप्सूल है, कवच है। तो सब कवच बड़े कई जन्मों के कई अच्छे कर्म है, सत्कर्मों का ये फल है। जब कई जन्मों के कर्म फलित हो जाते हैं तब महामंत्र के विषय में सुनने की और महामंत्र का जप करने की इच्छा उत्पन्न होती है। कई जन्मों के सत्कर्म जब एक साथ मिलना शुरू होते हैं तब जाके महामंत्र में रुचि उत्पन्न होती है। और मान लो हमारी महामंत्र में रुचि नहीं हो रही है तो समझना चाहिए कि कई जन्मों के खराब कर्म अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, और कब तक पड़े रहेंगे पीछे पता नहीं है। तो इसलिए महामंत्र का उच्चारण नित्य होते रहना चाहिए शुद्ध भाव से। अब तीसरे प्रकार की बुद्धि बता रहे, समाधाव चला बुद्धि, अर्थात समाधि में अचला बुद्धि। देखिए, ध्यान रखिए, हमको इस बात का पक्का चिंतन मनन स्मरण होना चाहिए। समाधाव चला बुद्धि अर्थात समाधि में अचला बुद्धि। तो इसमें समाधि में अचला, समाधि लगने पर जो अचला बुद्धि होती है अर्थात शरीर क्रियाशील रहता है समाधि में है हम। मानो समाधि का अर्थ क्या, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छा बताया है, बहुत सुंदर कहा है। कृष्ण भावना भावित होना ही वास्तव में समाधि है। समाधि का अर्थ क्या है, शरीर क्रियाशील और बुद्धि अचल, ये समाधि की स्थिति है। क्या, शरीर क्रियाशील और बुद्धि अचल, अचल मतलब चलायमान नहीं, स्थिर। तो आप जितने भी योग के प्रकार या जितने भी जो भी आपने सुन रखा है अभी तक, इसमें ऐसा कौन सा संप्रदाय बोलो या कोई योग बोलिए जिसमें ऐसा पॉसिबल संभव है कि शरीर क्रियाशील और बुद्धि अचल, समाधि की जो व्याख्या है। अभी तक बहुत से लोगों ने समाधि ली है, जो भी समाधि की व्याख्या है, शरीर क्रियाशील बुद्धि अचल। बुद्धि अचल करने का वो प्रयास करते हैं बड़ी ध्यान धारणा करके, परंतु शरीर को भी वो क्या करते हैं, निष्क्रिय करते हैं। शरीर को निष्क्रिय करके बुद्धि को अचल करके समाधिस्थ हो जाते हैं। परंतु प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी समाधि की व्याख्या कहते हैं इस श्लोक में, कहते हैं शरीर क्रियाशील। अब शरीर क्रियाशील कैसे करें, शरीर क्रियाशील अर्थात शरीर में कुछ तो क्रिया करते रहने चाहिए, क्योंकि शरीर, जब इस शरीर में आत्मा आया है तो शरीर क्रिया करेगा, ये शरीर का धर्म है। शरीर का धर्म क्या है, कर्म करना, क्रिया करना, शरीर क्रिया करेगा। तो शरीर में ऐसी क्रिया करनी चाहिए, जैसे मान लो हाथ है तो इन हाथों से भगवान के लिए हार बनाना चाहिए, इन हाथों से भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, इन हाथों से भगवान के लिए श्रृंगार बनाना चाहिए। ये हाथों की क्रिया है। जो हमारे पैर है, इन पैरों से भगवान के मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह तक, भगवान तक चलते जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये आंख है दृष्टि, ये आंख से भगवान का दर्शन करना चाहिए। कान से भगवान की कथा सुननी चाहिए, मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह है शरीर की क्रियाशीलता। और बुद्धि को अचल अर्थात बुद्धि को स्थिर करना चाहिए, जैसे कि हरिदास ठाकुर ने बुद्धि को स्थिर किया है हरे कृष्ण महामंत्र में। शरीर से सेवा और बुद्धि से हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य एकाग्र होकर चिंतन, इसको कहते हैं समाधि। यह समाधि की शुद्ध व्याख्या है। शरीर क्रियामान क्रियाशील और बुद्धि अचल, अचल अर्थात स्थिर। भगवान के नाम में बुद्धि स्थिर और भगवान की सेवा में शरीर क्रियाशील, इसलिए कहा जाता है कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति, अर्थात वो व्यक्ति समाधिस्थ है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत है, कृष्ण भावना भावित है, वो व्यक्ति क्या है? समाधिस्थ है। वास्तविक वही समाधि है। और वो समाधि लेने से आनंद की अनुभूति, भगवान को तो आनंद मिलता ही है, जब भगवान को आनंद मिलता है तो सारे जीवों को आनंद प्राप्त होता है, भगवान की दिव्य सेवा का अनुभव हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत की समाधि में सभी इंद्रिय श्री कृष्ण की सेवा में लगाई जाती है, इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना ही स्वाभाविक रूप से मूल रूप से समाधिस्थ होना है। लेकिन तो हम रोज ऐसी समाधि लगा सकते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि जीवन में एक आध बारी समाधि लगती है, कई लोग ऐसे कहते हैं, परंतु प्रभुपाद जी की और पूरी गुरु परंपरा की कितनी कृपा है कि हम रोज समाधि लगा सकते हैं, कि नहीं नहीं लगा सकते? बोलिए तो हरे कृष्ण
हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यहाँ जो अर्जुन की बुद्धि की भगवान चर्चा कर रहे हैं, यहाँ अर्जुन की भी बुद्धि इसी प्रकार से भी अर्जुन की बुद्धि है, कैसी? समाधिस्थ बुद्धि है। अर्जुन की भी बुद्धि समाधि में लगी हुई है, कृष्ण भावना भावित है। कैसे पता चलेगा अर्जुन की बुद्धि कृष्ण भावना भावित है? कृष्ण भावना भावित इसलिए जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, किस लिए पहुंचे? युद्ध तो निश्चित हो गया, दोनों पक्ष अब युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। अब दोनों जो है भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए गए, दुर्योधन और अर्जुन। युवा वैसे कि दोनों एक ही समय वहां पहुंच गए, और दोनों जिस समय वहां पहुंचे उस समय भगवान योग निद्रा में थे। दुर्योधन भी देखा भगवान योग निद्रा में है, पहले दुर्योधन पहुंचा, देखा भगवान योग निद्रा में है, तो भगवान के मस्तक सर के साम पास वो बैठ गए दुर्योधन। और थोड़े समय पश्चात, कुछ क्षण पश्चात अर्जुन आए, उन्होंने देखा भगवान योग निद्रा में है, वो उनके चरणों के पास बैठे। और जब भगवान ने आंख खोली तो उनको सबसे प्रथम कौन दिख गए? अर्जुन दिखे, और फिर दुर्योधन दिख गए। तो और भगवान पूछने लगे कि दोनों का क्या प्रयोजन है, किस प्रकार से, किस लिए आप आए हो, मैं आपकी क्या सहायता करूं? देखिए ये शिष्टाचार होता है, इसको कहते हैं सदाचार। शिष्टाचार से भी बड़ी उपयुक्त शब्द है सदाचार। कोई भी यदि हमारे यहां पे आते हैं तो क्या पूछना चाहिए? आइए आइए, आपका स्वागत है, बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ये बात भगवान ने भी अर्जुन को पूछी, और दुर्योधन को पूछी, अर्जुन को भी क्या पूछे भगवान? बताइए मैं क्या सेवा करूं आपकी, आपको मेरे से क्या अपेक्षा है? मैं पूर्ण करूंगा आपकी अपेक्षा। तो भगवान भी बड़े दयालु है, तो अर्जुन को उन्होंने सर्वप्रथम कहा, परंतु दुर्योधन कहने लगा कि मैं तो सर्वप्रथम आया हूं, आप पहले मुझे मेरी बात सुनिए।
पर कृष्ण कहे आप भले ही सर्वप्रथम आए हैं परंतु मैंने सर्वप्रथम अर्जुन को देखा। देखिए इसलिए यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के दृष्टिक्षेप में हमको रहना है। भगवान के दृष्टिक्षेप में ही रहना है। भगवान का दृष्टिक्षेप कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करके, भगवान के अर्च विग्रह का ध्यान करके। भगवान के अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से उनके दृष्टिक्षेप में हम रहेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे कि मैंने उनको देखा, अर्थात दृष्टिक्षेप। और भगवान ने जब उनको देखा तो फिर दुर्योधन कहने लगा ठीक है कोई बात नहीं मैं मान लेता हूं। तो कहा अर्जुन को मैं क्या दे सकता हूं, आप दोनों युद्ध करने के लिए तुले हुए हो। वैसे तो दुर्योधन की तुलना में अर्जुन तो नहीं कर युद्ध करना चाहते हैं मूलतः, परंतु जो भी स्थिति है अब मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास नारायणी सेना है, मेरी बहुत बड़ी सेना है, एक और वो सेना है, एक और मैं हूं, है कि नहीं? एक और वो सेना है और एक और मैं हूं, तुमको क्या चाहिए मांग लो, दो में से एक मिलेगा। परंतु कंडीशन यह है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं निहत्था रहूंगा। तो अर्जुन कहे ठीक है मुझे आप ही चाहिए, निहत्य तो निहत्य। दुर्योधन मनी मन बड़ा खुश हो गया, क्या मूर्खता की अर्जुन ने ये सोचते हुए निहत्य को लेके क्या करोगे, शस्त्र नहीं चलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली। तो इसलिए भगवान से कभी भी ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए, भगवान को ही मांग लेना चाहिए। मान लो भगवान आपके सामने आके प्रसन्न हो गए आपके जप की वजह से, बहुत अच्छा जप करते हैं आप, एक दिन भगवान स्वयं आपके सामने आ गए, बोलो भक्त क्या चाहिए। कोई एक अज्ञान अज्ञानता की सीमा होती है। एक माता जी बड़ी अपने संसार के इस लालन पालन पोषण में ही पूरी तरह से व्यग्र थी और उसका रोज का कार्य यह था कि जंगल से जाके कुछ लकड़ियां एकत्रित करना, उसका गट्ठा बांधना और घर पे लेके आना, बस इतनी पूरी तरह से अपने अपने भौतिक कार्यों में तल्लीन लिप्त थी। बड़ा अच्छा भाव था, भगवान को भी मानती थी, भगवान की पूजा पाठ भी करती थी। उनके शुद्ध भाव से एक दिन भगवान उनके सामने आए गए, बड़ी शुद्ध भाव है। परंतु उस समय क्या हुआ था, उनके सर के ऊपर का जो गट्ठा था लकड़ियों का, वो नीचे गिर गया था और नीचे गिरने से उसने बोला हे भगवान अब इसको कैसे उठाऊंगी। ऐसे बोला तो भगवान वो सोचे बेचारी बहुत दिन से मेरी पूजा पाठ करती रही है, अच्छे स्वभाव की है, शुद्ध भाव है, अपने कर्मों में कर्म करती रहती है, भगवान दयालु है। तो आ गए उनके सामने, बोले माता जी हरे कृष्णा, क्या चाहिए आपको, क्या मदद करूं आपकी बताओ। भगवान अपने भगवान के दिव्य रूप में देख रहे कि भगवान कृष्ण साक्षात मोर पंख लगा हुआ है, बांसुरी रखे हुए है। तो माता जी ने कहा है आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत कृपालु है, बड़ी कृपा हो गई आपकी कि आप आ गए, ये जो गट्ठा मेरे सर पर का नीचे गिर गया उसको कृपा करके फिर से मेरे सर पे उठा के रख दीजिए ताकि मैं घर पे पहुंचू। तो भगवान भी क्या मांगना चाहिए, वही संसारिक विषय वस्तुओं का वजन, वही बोझ, बड़ी अच्छा वेल पॉलिश्ड बोझ, बहुत अच्छा रैपर के साथ बहुत अच्छी तरह से बंधा हुआ बोझ। तो अर्जुन दुर्योधन ने बोझ मांगा, पूरा सेना मांग लिया, ऐश्वर्य मांगा, परंतु अर्जुन ने क्या मांगा, साक्षात भगवान को ही मांग लिया। तो आप यह बात ध्यान में रखिए, भगवान बोले आपको क्या वरदान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए बस, कोई वरदान नहीं चाहिए, कुछ वस्तु नहीं चाहिए, कुछ विषय नहीं चाहिए, और मुझे भ्रमित भी मत कीजिए, भगवान को बोलिएगा मुझे आप चाहिए, इतना फर्म डिटर्मिनेशन, पूरा निश्चय चाहिए, भगवान बड़े भगवान आसानी से अपने आप को नहीं देते, भगवान की चतुर है हमारे भगवान। भगवान बोला अरे तुमको एक महल दे देता हूँ, एक देश का एक राजा प्राइम मिनिस्टर तुमको बना देता हूँ, तो भी क्या कहना है? नहीं भगवान हमको तो आप ही चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो जब अर्जुन को प्रश्न पूछा भगवान ने सब देने के बाद, दुर्योधन चले गए, अर्जुन को भगवान ने पूछा कि हे अर्जुन तुमने मुझे ऐसे, तुमको सब पता है मैं निहत्ता हूँ, ऐसे फिर भी तुमने मुझे मांग लिया, ऐसा क्यों किया? तो अर्जुन कहने लगे हे भगवान हे श्री कृष्ण, मैं मन ही मन नित्य सोचते रहता हूँ कि मैं अपने जीवन रथ की पूरी बागडोर आपके हाथ में दे दूं। कई वर्षों से और कई जब से मुझे समझ में आ रहा है, मेरे मन में यही चलता है कि कब मैं अपने जीवन रथ की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में दे दूं, और अब जब मौका आ गया तो मैं इतने अच्छे मौके को कैसे छोड़ सकता हूं। यह सोच के कि आप मेरे रथ के सारथी बनेंगे, इस भाव से मैं आपको मांग लिया। देखिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये अर्जुन की कितनी निश्चला बुद्धि है, आप सोचिए। इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, समधा वचला अर्थात शरीर क्रियाशील और बुद्धि स्थिर अर्थात कृष्ण भावना भावित। तो यहां अर्जुन कैसे है, इस उदाहरण से हमको पता चलता है कि अर्जुन समाधिस्थ है वास्तव में, मूलतः समाधिस्थ, मूलतः अर्जुन का स्वभाव जो है, बुद्धि जो है समाधिस्थ है। अब यहां इसी श्लोक में भगवान आप देखे तो एक शब्द कह रहे हैं योगम अवाप्स्यसि, यदा योगम अवाप्स्यसि, ये जो योग है अर्थात ये जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति अवाप्स्यसि, ये नहीं मिलेगी, ये मिलेगी कब? अर्थात ये जो तीसरी स्थिति है बुद्धि का, तीसरा जो प्रकार है कौन सा? समाधिस्थ बुद्धि अर्थात कृष्ण भावना भावित बुद्धि। तीसरे नंबर की बुद्धि कब प्राप्त होगी? जब पहले दो प्राप्त हो गए तब, भगवान ये कह रहे हैं। अप्राप्तसी अप्राप्तसी, ये प्राप्त कब? प्राप्त कब होगा? कृष्ण भावना भावित जो स्तर है या समाधि का जो स्तर है अर्थात कृष्ण भावना भावित का स्तर है, अर्थात कृष्ण को केंद्र में रखते हुए सारे कर्म करने का जो स्तर है, वो कब प्राप्त होगा? उस प्रकार से बुद्धि कब सोचेगी? जब पहले ये दो प्रकार होंगे। पहला प्रकार क्या है? कर्म कांडीय अलंकारिक भाषा स्वर्गीय सुख के प्राप्ति के विचारों से विचारों को सुनना ही नहीं, श्रवण ही नहीं करना है। दूसरा क्या है? पहले तो श्रवण नहीं करना है, मान लो यदा कदाचित सुनना पड़ा तो उससे प्रभावित नहीं होना है। जब ये दो बातें होगी, ये दो प्रकार की बुद्धि जब हमारी होगी, तब बुद्धि धीरे धीरे प्रगति करके तीसरे स्तर पे आ गई। तीसरे स्तर है समाधि, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित। और जब कृष्ण भावना भावित हो गए, नित्य समाधि होगी, तो क्या होगा? तो भगवान कृष्ण का हमको नित्य संग प्राप्त, उसी को योग कहते हैं। इसमें कहा गया है जो योग प्राप्त होने की जो बात कही है अर्थात भगवान को प्राप्त करने की बात कही है, सही कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह जब हम करते हैं, इस प्रक्रिया में जब हम हैं, तो इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में हमारे जो हमारे शत्रु है, जो हमको प्रताड़ित करते रहता है, वो कौन है? वो हमारा मन है, दशों दिशाओं में दौड़ता है। दसों दिशाओं में दौड़ता है और दसों दिशाओं में जो कुछ भी एंजॉयमेंट का है उसको ढूंढते रहता है, विषय वस्तुओं को, इंद्रिय भोगों को, एंजॉयमेंट्स के जो विषय है उसको दसों दिशाओं से ढूंढ ढूंढ के उठा के लाता है। ऐसा है ये मन, ऑल डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा, दसों दिशाओं में जाता है और क्या उठा के लाता है, भोग विचार, विषय वस्तुओं को भोगने के, इंद्रिय तृप्ति करने के विचार, इन सब सारे कूड़े करकट को उठा के लाता है, दसों दिशाओं में घूमता है। देखिए एफर्ट कितना है, दसों दिशाओं में घूमता है और उठा के लाता है कचरा, और वो हमको क्या करता है, प्रताड़ित करता है। दो प्रकार की दौड़ लगाता है मन, एक जैसे बंदर होता है, बंदर क्या करता है, एक डाली के से दूसरे डाली पे जंप मारता है, दूसरे डाली से तीसरे डाली पे, एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरे से तीसरा पेड़, ऐसा जंप जंप मारता है। और मान लो उसको बांध के रखा बंदर को, रस्सा लेके बांध दिया बंदर को, तो बांधने पर भी शांत नहीं बैठता, ऐसे 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 चलते रहता है उसका। इसी प्रकार से मन दो प्रकार की दौड़ लगाता है, एक तो बाहरी संसार में बड़ी लंबी दौड़ लगाता है, संसार के दसों दिशाओं में जो कूड़ा करके तो उसको उठा के रखता है, और नहीं तो अंदर भी, अंदरूनी अंदरून, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, कोई एक बात हो गई, एक ही बात जीवन में कभी हो गई होगी, अभी तक उस बात से हैरान रहते हैं, परेशान, बहुत परेशान। तो इस प्रकार से मन जो है, मंत्र ध्यान करने से मन की इस दौड़ को रोका जा सकता है। ये जो मन दौड़ता है इससे, मंत्र ध्यान से ये मन रोका जा सकता है। क्या प्रोसेस है मन को नियंत्रित करने की, तो जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाता है तब बुद्धि जो है तल्लख हो जाती है। बुद्धि, बुद्धि का फंक्शन क्या है, बुद्धि का कार्य क्या है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द, इस मूल में तो ठीक है, पर उसके भी पहले हमने इंट्रोडक्शन में और फर्स्ट पहले अध्याय में बहुत चर्चा की थी इसकी, नहीं वो तो मन का कार्य, वो तो मन का कार्य, अलर्ट रहना, हमने बताया था बुद्धि का कार्य अलर्ट रहना, किसके प्रति, यदि समय के प्रति हम अलर्ट नहीं तो हम बुद्धिहीन है, बुद्धि नहीं है हमारे पास वास्तव में। समय के प्रति अलर्ट कौन है कैसे पता चलेगा, जो ये समझता है कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना, इस प्रोसेस में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है वो अलर्ट है, अर्थात जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है वो व्यक्ति अलर्ट है, अर्थात उसकी बुद्धि शार्प है, उसकी बुद्धि क्या कर रही है, सात्विक स्तर पे आके अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो ये जो बुद्धि जो अलर्ट रहती है वो किस बात पे अलर्ट रहती है, मन के ऊपर ध्यान रखती है। बुद्धि क्या करती है, मन का नित्य निरीक्षण करते रहती है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बड़े ध्यान से शुद्धता से करते हैं तो ये बुद्धि क्या करती है, मन का निरीक्षण करती है, मन के ऊपर वॉच रखती है, ध्यान रखती है। मन के ऊपर जब बुद्धि ध्यान रखती है, ध्यान रखते रहते कभी कभार मन तो दसों दिशाओं में दौड़ता है, कोई बोगस विषय उठा के लेके आता है, ऐसा विषय उठाने के लिए जब मन कहीं दौड़ता है तो बुद्धि क्या करती है, तुरंत उसके पीछे भागती है, उसकी गर्दन पकड़ती है और फिर खींच के लाती है और फिर बैठ बोलती है, फिर क्या बोलने के लिए कहती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। सो इंटेलिजेंस इज वॉचिंग योर माइंड, बुद्धि हमारे मन को मन का निरीक्षण करते रहती है। यदि हम जब करते हैं तब, यदि हम जब नहीं करते तब क्या होता है, तब ये होता है मन अर्थात भयानक विचार। आप सोचिए सारे ब्रह्मांड में मन घूमता है तो कितने विचार उत्पन्न हो सकते हैं। अभी यहां बैठा है, अभी एक सेकंड में अमेरिका जाएगा, कलकत्ता जाएगा, कहां कहां जाएगा, चंद्र पे जाएगा, सूर्य पे जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करेगा। तो मन में अब जो विचार है करोड़ों विचार है, और बुद्धि अलर्ट नहीं है। बुद्धि तो हरे कृष्ण महामंत्र करती नहीं है बुद्धि अर्थात बुद्धि सात्विक नहीं है। तो बुद्धि जब सात्विक नहीं है तब होता ही है कि बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, और जब ये मन इस प्रकार के विषयों की ओर दौड़ता है तो बुद्धि उसके पीछे दौड़ने में अक्षम रहती है, सक्षम नहीं रहती, और समय ऐसा आ जाता है कि मन ही बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है, चुप करा देता है, तोड़फोड़ कर देता है बुद्धि की। जैसे एक नदी है, उसके दो किनारे हैं, वो किनारों की वजह से नदी बहुत अच्छी तरह से बहती है जल उसमें, परंतु बहुत ज्यादा बाढ़ जब आ जाती है, बहुत ही ज्यादा पानी जब बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो क्या होता है, किनारे टूट जाते हैं, पूरा पानी खेत में घुस जाता है, खेत को फसल को तहस नहस डिस्ट्रक्शन विध्वंस कर देता है। उसी प्रकार से मन, यदि बुद्धि मन में असंख्य विचार हो जाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थात मंत्र ध्यान नहीं होता है तो बुद्धि को शक्ति नहीं मिलती, बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। शक्ति अर्थात सत्व, बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती, और जब सात्विक बुद्धि नहीं होगी तो मन का जो विचारों का जो फ्लो है इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा कि बुद्धि रूपी किनारों को तोड़ देगा, और जब किनारे टूट जाएंगे जैसा विध्वंस होता है वैसा पर्सनालिटी डिस्ट्रक्शन, पूरा जो व्यक्तिमत्व है वो खत्म हो जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है जीवन में, स्ट्रेसफुल लाइफ। इसलिए मंत्र ध्यान करना बहुत ही जरूरी है, और जब मंत्र ध्यान करते हैं तो बुद्धि सात्विक होती है, शक्तिशाली होती है, मन कितना भी भटकने का प्रयास करे बुद्धि उसके पीछे लग के उसको पकड़ के लाती है। लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। दूसरी पंक्ति में यह शब्द है सदा योगम अवाप्तसी, तो कह रहे उस समय तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी, अर्थात योग की प्राप्ति होगी। किस समय, ये भी तीनों बातें पूरी होगी, ये जब तीनों बातें पूरी होगी तब उस समय तुमको योग की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत अच्छा योग का वर्णन बताया है, भगवान की प्राप्ति है योग की प्राप्ति। छह प्रकार के योग बताए प्रभुपाद जी महाराज, एक प्रकार वो बताते हैं योग का, एक प्रकार योग किसको कहते हैं, योग का अर्थ क्या है। तो एक पहला अर्थ है यह जान लेना कि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, योग का एक ये अर्थ है। कैसे योग का एक ये अर्थ हो सकता है भाई, भगवान का दास होना ये कैसे योग का अर्थ हो सकता है, ये अभी शुरू हुआ क्या भगवान का दास होना। यहां कहा है प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का दास होना ही योग का एक अर्थ है। तो कैसे, क्योंकि यह बात तो केवल मनुष्य ही समझ सकता है कि मैं भगवान का दास हूं, कौन और कोई समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता, केवल मनुष्य समझ सकता है कि मैं भगवान का दास हूं। और भगवत गीता में एक श्लोक है ममे अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कह रहे कि सारे मेरे अंश है, सारे मेरे ही पार्ट एंड पार्सल है, सारे सारे जीव मेरे ही पार्ट एंड पार्सल है। जैसे समझ लीजिए कि प्रभुपाद जी उदाहरण दिए है तात्पर्य में प्रवचन में, इसी श्लोक के ऊपर प्रवचन करते हैं प्रभुपाद जी कहे, मान लो हाथ है और पेट है, तो जब ये हाथ कोई अन्न प्रसाद जब पेट तक पहुंचाएगा, है ना, कोई भी हाथ, हाथ क्या है, एक अंश, एक पार्ट, इसका फंक्शन क्या है, कोई भी अन्न प्रसाद क्या करना, पेट तक पहुंचाना। यदि ये पेट तक नहीं पहुंचाएगा, मान ये एक अंश है, इसका पार्ट, ये मान, ये ऐसा समझ ले कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, क्यों मैं पेट को सेटिस्फाई करूं, मैं पेट की क्यों सेवा करूं, या मैं नहीं पहुंचाऊंगा पेट को कल से, स्ट्राइक। हाथ यदि ये सोचे कि मैं नहीं पहुंचाऊंगा पेट को, तो रिजल्ट क्या होगा, हाथ ही कमजोर हो जाएगा। कौन कमजोर होगा, हाथ ही कमजोर होगा ना, दो दिन होगा कि हाथ उठने को भी तकलीफ हो जाएगा, हाथ कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जीव यदि ये सोचे कि मैं भगवान की सेवा नहीं करूं, भले मैं अंश हूं भगवान का, जैसे हाथ शरीर का एक पार्ट है, अंश है, वो ये सोचे कि मैं शरीर को समाधान, मैं पेट को ही क्यों सेटिस्फाई करूं, क्यों पेट की सेवा करूं, तो हाथ वीक हो जाएगा। इसी प्रकार से जीव भी भगवान का अंश है, परंतु वो सोचे कि मैं क्यों भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान की सेवा नहीं करना चाहता, तो जो हाल हाथ के होते हैं वही हाल जीव के होंगे, है कि नहीं। अर्थात वो जीव दुखी कष्टी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कमजोर किस दृष्टि से हो जाएगा, आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर हो जाएगा। उसका भगवान के साथ का जो संबंध है, भगवान को प्राप्त करने की जो चेष्टा है, वो खत्म हो जाएगी। और जब वो खत्म हो जाएगी तो कहां का योग और कहां का अत्याय, क्या योग और क्या अयोग, यदि वही उसके अंदर वो भाव नहीं है भगवान को प्राप्त करने का, तो योग की क्या है, योग का क्या व्याख्या, योग का अर्थ क्या है, योग पूरा निरर्थक हो जाएगा। इसलिए योग अर्थात जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदात, योग अर्थात यह जान लेना कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है, नित्य दास, इसी को नित्य योग कहते हैं। मनुष्य कृष्ण का दास है, यही योग है। दूसरा योग का अर्थ बताया है, यह जान लेना कि हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि जो कुछ भी कर्म हम करते हैं वो कृष्ण भावना भावित होकर करना है, कृष्ण को केंद्र में रख के करना है, एड कृष्णा इन योर ऑल एक्टिविटी, जो कुछ कर रहे, यद करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी ददासी यद, यद तपस्यासी, जो जो कुछ भी कर रहे हैं, तत्कुरुषस्व मदर्पणम, जो तपस्या कर रहे हो जहां के वो करो, पर मुझे जोर दो उसको, अर्थात मुझे केंद्र में रखिए और सब कुछ करो। यह कृष्ण भावना में रह के अपने सारे कार्य करना, इसके ऊपर पहले चर्चा हो चुकी है। तो यह योग का दूसरा भाग है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जो कुछ भी कार्य करेंगे वो कार्य आपको बांध देगा बड़े बड़े रसों के, तीन प्रकार के रस हैं, रजस तमस और सत्व, ये तीनों रस्तों से वो कर्म जो कर रहे हैं सारे कर्म आपको बांध डाले। तो फिर कहां का योग, योग का अर्थ, योग इज इक्वल टू कृष्ण प्राप्ति, ऐसा समझिए, योग इज इक्वल टू कृष्ण प्राप्ति। तो यदि हम हमारे कर्म के बंधनों से बंध गए रस्तों से, तो कैसे कृष्ण प्राप्ति होगी और कैसे योग होगा। तो इसलिए योग का एक और अर्थ ये होता है कि भगवान को अपने सारे कार्यों में जोड़ देना। फिर और एक अर्थ प्रभुपाद जी कहे, ऐसी स्थिति में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है, अर्थात कृष्ण के सानिध्य में रहना भी एक प्रकार का योग का एक प्रकार है, कृष्ण के नित्य सानिध्य में रहना। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, है ना, अमेरिका में गए तो ना तो उनके पास धन था, ना उनके पास कोई साथीदार था, ना उनमें कोई शारीरिक बल था, केवल और केवल प्रचार करने के लिए गए, वो भी गुरुदेव के आदेश को पूर्ण करने के लिए। और उनके साथ सानिध्य केवल किसका था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो कृष्ण का सानिध्य यदि एक योग का प्रकार है। देखिए कृष्ण का दास, देखिए नहीं कृष्ण का दास, कृष्ण को केंद्र में रखना, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना, ये सब योग का प्रकार है। वास्तव में यही योग का प्रकार है, दूसरा कोई योग का प्रकार नहीं है। वो शारीरिक स्तर पर शरीर को सुख थोड़ी देर के लिए मिल सकता है, परंतु भगवत प्राप्ति वो नहीं हो सकती। फिर कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। जब हम ये तीनों प्रकार का बुद्धि का स्तर प्राप्त करेंगे, तब उस स्तर पर जब हम जाएंगे, तब भगवत गीता के या भगवान के सारे उपदेश आसानी से समझ पाएंगे। जब ये समझेंगे तब वो भगवान को प्राप्त करने की स्थिति है या वही योग है। अब भगवान के आदेश पाने वाले जो होते हैं, जो भगवान के आदेश, जैसे आप कहेंगे भगवान ने भगवत गीता में कहा है, परंतु ऐसा नहीं है। जब आप भगवान की स्मरण चिंतन भगवान को केंद्र में रखेंगे, अपने आप को भगवान के दास समझेंगे, तो होगा ही कि भगवान हमको उपदेश देंगे। यहाँ कहा गया है ना कि भगवान भगवान के उपदेशों का पालन हम करेंगे, तो भगवान को उपदेश देना पड़ेगा उसके लिए। हम यदि भगवान के उपदेशों का पालन करते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि भगवान उपदेश देते हैं, है कि नहीं। भगवान ने पहले भी उपदेश दिए हैं, माधवेंद्रपुरी को उपदेश दिए हैं। क्या उपदेश दिया है माधवेंद्रपुरी जी को? गोपाल जी आए और उनको, गोपाल जी उनको कहे कि ए बाबा उठो, उधर मैं वो पहाड़ी के नीचे हूँ गोवर्धन के, निकालो मुझे वहां से। गोपाल जी को निकाला, श्रीनाथ जी को वहां से निकाला गया। तो उपदेश किसने दिया था? भगवान ने दिया। उसके 2 साल बाद फिर बोले मुझे बड़ी गर्मी हो रही है, जाओ मलय पर्वत से चंदन लेके आओ, मलय चंदन, बहुत गर्मी हो रही है लेके आओ। ठीक है, उपदेश दिए, मना ये पर्वत गए चंदन लेने के लिए। वापिस आते आते बड़ा समय हुआ, बहुत देर हो गई, तो गोपाल जी बोले कहां पे हो? बोले रेमुना में हूं। तो फिर गोपीनाथ को ही चंदन लगा, मुझे प्राप्त हो जाएगा। देखिए उपदेश दिया, भगवान उपदेश देते हैं, और भगवान उपदेश देते कब है? जब हम ये तीनों स्तर प्राप्त करते हैं, योग में स्थित हो जाते हैं। उसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी श्याम कुंड के पास कुछ चट्टान कुछ खोद रहे थे, गड्ढा कर रहे थे कुछ श्याम कुंड के पास, रघुनाथ दास गोस्वामी वो खोदते खोदते एक पत्थर फूट गया और पत्थर में से रक्त आने लगा, ब्लड। तो बोले वो दुखी में क्या है ये? तो भगवान ने उनको कहा कि हे बाबा, वो गोवर्धन की जीवा है, उसको धक्का लग गया है, वो गोवर्धन की जीवा है, उसको उठाओ, उनके एक विशेष विशेष मंदिर में स्थित करो, उनकी पूजा पाठ करो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने वैसे किया, उपदेश दिया भगवान ने। प्रभुपाद महाराज जी को बोट पे, जहाज पे, शिप पे जाते वक्त 2-3 बार अटैक आए। प्रभुपाद जी कहे भगवान आपको जो करना है करो, मैं तो निकला आपकी सेवा में, आपको क्या करना है? प्रभुपाद जी को भगवान राधा कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए, साक्षात कर दिया, और तब हो गए प्रचार, उनका पूरा पूरे विश्व में प्रचार हुआ। तो भगवान उपदेश देते हैं, कब देते हैं? जब हमारी बुद्धि का स्तर उस प्रकार से हो जाएगा, समाधिस्थ अर्थात कृष्ण कॉन्शियस। यही प्रभुपाद जी ने इसलिए सारे संसार को कहा, जप करो बस, है कि नहीं। तो इस प्रकार से और योग का एक प्रकार है, ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब यदि हम इस प्रकार से इस स्तर पे आ जाते हैं, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमारी बुद्धि इतनी निश्चय स्तर पे, मतलब अर्थात एकदम अचल हो जाती, डगमगाती नहीं, कभी भी डगमगाती नहीं। जैसे माता सीता, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आने दीजिए, भक्त लोग अटल रहते हैं, भक्ति में अटल रहते हैं। माता सीता को कितनी विपरीत परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति आती, उनको जैसे वन में जाने के लिए कहा गया तो वो तुरंत के भगवान राम की सेवा के लिए, भगवान राम की सेवा ये उनके लिए अटल निश्चय था। वो तुरंत सारे संकटों को मात देने के लिए तैयार हो गए और निकल पड़ी वन में जाकर। वहां पे रावण ने जब उनको अपहरण किया और सारे राक्षसियां उनको प्रताड़ित करने लगी थी, इवन मृत्यु दंड के लिए बोलने लगी कि तुम रावण को स्वीकार करो नहीं तो उनको मार देंगे। देखिए माता सीता की निष्ठुरता, उन्होंने कहा तुम मुझे मार दो लेकिन मैं रावण को स्वीकार नहीं, मारो, हत्या करो मेरी, मरने के लिए, मृत्यु के लिए तैयार हूं। तो ये जो भक्ति में भगवान के लिए, श्री राम के लिए, तो भगवान के लिए ये जो निश्चय दृढ़ता आता है, निश्चयान धैर्यात, उत्साह निश्चयान धैर्यात, उत्साह निश्चय और धैर्य तभी आता है जब हम बुद्धि को उस स्तर पे ले जाएंगे। कौन से स्तर पे? कृष्ण भावना की स्तर पे। तो इस प्रकार से, और एक प्रकार इस अवस्था में श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु परंपरा की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होता है। क्या होता है जब इस अवस्था तक हम पहुंचते हैं, यदि पहुंचेंगे तो इस अवस्था में करना क्या होता है? केवल गुरु परंपरा की आज्ञा का और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना होता, उनकी जो भी आज्ञा है उस आज्ञा का पालन करना। प्रभुपाद जी को किसी ने एक बार प्रश्न पूछा, प्रभुपाद महाराज आपने बहुत बड़ी जादू, इतने सारे संसार में इतने बड़े मंदिर बांध दिए, इतना बड़ा कार्य किया, आप बहुत महान हैं। प्रभुपाद जी बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल गुरु की आज्ञा का पालन किया बस। प्रभुपाद जी क्या कहें, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। यह भी एक योग का प्रकार, भगवान श्री कृष्ण और गुरुदेव, गुरु परंपरा, इनके उपदेशों का पालन करना भी एक योग का प्रकार। प्रभुपाद जी यही कहे, प्रभुपाद जी से बड़ा कोई योगी है? प्रभुपाद जी महान योगी है क्योंकि उनको उन्होंने सब सिद्ध कर दिखाया, यानी कि केवल बड़े बड़े प्रवचन किए और केवल बोलते गए नहीं, जो उन्होंने बोला, जिसका प्रचार किया, उसका आचरण भी किया और दिखाया सब सारे संसार। लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस बार प्रभुपाद जी ने इस योग के विषय में कुछ बातें बताई है। एक बार पीसी सरकार और जिला प्रभुपाद जी कलकत्ता में, तो पीसी सरकार पता है आपको, जादूगर, वो पीसी सरकार का जादू का बड़ा आयोजन किया गया था कलकत्ता के बड़े हॉल, कोई बहुत बड़े हॉल में, और वहां प्रभुपाद जी को भी किसी ने आमंत्रण दिया था जो ऑर्गेनाइजर थे। अब पीसी सरकार और प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी बैठे और पीसी सरकार आ गए अपने जादू दिखाने के लिए। उन्होंने अपने जादू की, जैसे वो स्टेज पे आए तो बहुत सारे लोग उनके स्वागत के लिए, पीसी सरकार के स्वागत के लिए फूल ही फूल फेंकने लगे, फूलों का वर्षाव होने लगा, ऊपर से बहुत वर्षाव होने लगा। तो पीसी सरकार ने क्या किया, देखा देखा और वो सारे फूलों को गायब कर दिया जादू से। सारे फूलों को गायब कर दिया, सारे लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, वाह 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 बहुत बढ़िया। फिर प्रभुपाद जी ने उनको एक प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी कहे आपने बहुत बढ़िया जादू की, बहुत अच्छी जादू है, वो ठीक बात है, लेकिन आप एक और जादू कीजिए।
बोले क्या? बोले देखो
जो सामने बैठे
हजारों की संख्या में
ये सारे लोग जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इन चारों बातों से हैरान है, परेशान है। जरा व्याधि जन्म मृत्यु बड़ी भयंकर दुखी कष्टी बड़ी वेदनाएं उनको है। हरे कृष्ण मेरा ही बज गया। तो बड़ी दुखी कष्टी है, आप ऐसा कुछ जादू कीजिए कि इनका इन इन बातों से पिंड छूट जाए। ये बातें इनको हैरान न करे, ऐसा कुछ कीजिए। ऐसा प्रभुपाद जी पीसी सरकार को कहे। और पीसी सरकार देखा इधर उधर और प्रभुपाद जी को एकदम पास में आके बड़े नम्र भाव से कहा, वो कहा प्रभुपाद जी ये जादू आप कर सकते हैं। ये फील्ड का मैं जादूगर हूं, मैं तो बाहरी मटेरियल को इधर उधर एडजस्ट कर देता हूं। वो आप बहुत बड़ी दिव्य बात कह रहे हैं, उसके जादूगर आप, वो जादू मेरे पास नहीं है। तो सोचिए कि प्रभुपाद जी कितने बड़े महान योगी थे, कितने बड़े जादूगर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है?
मन दो प्रकार से भागता है, जो पहला आपने बताया था कि वो संसार की 10 दिशा में भागता है,
बाहर और बाह्य और अंतर, बाह्य जगत और आंतरिक जगत, दो जगत में भागता है।
दूसरा
था आंतरिक, अर्थात मन क्या है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर दौड़ते रहता है। एक तो बाहर दौड़ता है, बाहर अंदर भी दौड़ता है, अंदर ही दौड़ता है मतलब विचारों की दुनिया में, मतलब विचारों की दुनिया मतलब जैसे बंदर एक जगह बैठता है लेकिन खुजाते रहता है, बांध दिया उसको। इस शरीर को आपने कहा यहाँ बैठ जाओ सत्संग सुनना है, शरीर बैठ गया लेकिन अंदर एक विचार आया, 9:30 शाप खत्म होगा तो अच्छा होगा, बाद में मुझे वहां 10 बजे वहां जाना है, लेट हो जाएगा तो सुबह जल्दी उठना है, चल रहे विचार। तो शरीर एक जगह बैठा है लेकिन मन अंदरूनी अंदरूनी डिस्टर्ब कर रहा है। अंदरूनी डिस्टर्ब अर्थात अंदर की जो बातें आपने सोच के रखी है, आपने जो बातें सोच के रखी है उसी के ऊपर चर्चा कर रहा है, आपने जो सोच के रखा है। दूसरी बात है आपने सोच के नहीं रखा है लेकिन किसी ने बोला है, अमेरिका के कोई एक व्यक्ति ने कभी कुछ बोला है तो तुरंत अमेरिका इस विषय पे सोच रहे हैं, या कहीं जापान जर्मनी या कोई बाहर के कोई भी बाहरी जगत, एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाह्य और आंतरिक। जैसे उसको समझना चाहे तो जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे जंप करता है, परंतु उसको पकड़ लिया, ये हो गया बाह्य स्तर पे। परंतु आपने सोचा नहीं इसको बाहर नहीं कूदने देंगे हम, इसको पकड़ के रखते हैं, आपने उसको चैन से बांध दिया, अब वो इधर से उधर कूदेगा नहीं, बैठ जाएगा। लेकिन जब वो बैठ जाएगा तो होगा क्या, वो खुजाते रहेगा बंदर अपने आप, उधर जंप नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा, एक से दूसरे जगह पे नहीं जाएगा, तीसरे जगह पे नहीं जाएगा, चौथी जगह पे वहीं बैठा रहेगा, लेकिन ये इस सबसे रहेगा अस्थिरता। तो बाह्य और आंतरिक प्रकार से, बाह्य दृष्टि से आंतरिक दृष्टि से मन डिस्टर्ब रहता है।
जो समाधि के 3 स्तर है उसमें जो पहला और दूसरा है वो एक ही जैसा, यानी पहला अगर कंट्रोल हम कर लेते हैं, जैसे कि
पहला कंट्रोल करते तो दूसरा आ जाएगा,
दूसरा
कंट्रोल करेंगे तो ठीक है। देखिए यदि आप श्रवण ही नहीं करेंगे तो प्रभावित होने का प्रश्न कहाँ है? अब मैं इसलिए कहा, मान लो श्रवण किए है, करना पड़ा किसी कारण से, तो भी प्रभावित नहीं होते। तो श्रवण नहीं करना, प्रभावित ना होना, ये एक जैसा नहीं है, पर एक पहले के ऊपर दूसरा निर्भर है। और जब दोनों अर्थात एक पहला आ जाता है तो 3 आ जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।